वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की संगति में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस बाइबल अध्ययन के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नए नियम की पुस्तक के प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने तीन प्रचार यात्राएं की और तीसरी यात्रा के अंत में वह चेतावनियों के बाद भी यरूशलेम जाना चाहता था। वह स्वयं जानता था कि वहां उसके लिए कष्ट प्रतीक्षा करता है, जैसा कि उसने कहा कि पवित्र आत्मा ने उसे यह बता दिया है। अतः वह विभिन्न स्थानों में शिष्यों से भेंट करता हुआ यरूशलेम को पहुंचता है और याकूब से भेंट भी करता है। याकूब ने उसे बताया कि वहां के यहूदी उससे रुष्ट हैं, अतः याकूब ने उसे राय दी कि चार विश्वासियों ने मन्नत मानी है जिनका वह खर्चा उठाए और उनके साथ शुद्ध हो जाए, जिससे कि उसे देखने वाले यहूदी सुनी हुई बात पर विश्वास न करे और जान ले कि पौलुस व्यवस्था पालन करता है। परंतु आसिया के यहूदियों ने उसे देखकर हुल्लड़ मचाया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पकड़ा गया। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम देखेंगे यरूशलेम के मंदिर में पौलुस। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें, प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 27 और 28 पद। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 27 और 28 पद, यहाँ पर लिखा है, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उसकाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि हे इसराइलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भीड़ का तो यही स्वभाव होता है, और इसी प्रकार से यह भीड़ भी कल्पना और गलत सूचना के आधार पर भड़क उठती है और सब मिलकर के पौलुस को पकड़ते हैं। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने तो इससे पहले त्रुफिमूस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। यहाँ पर देखिए कि यह अंतर जो हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, पौलुस इन प्रथाओं में दीक्षित था, अर्थात सारी बातों को जानता था। यरूशलेम में वह मंदिर गया और त्रुफिमूस एक अन्य जाति इफिसुस वासी था, और स्पष्ट है कि पौलुस की सेवा द्वारा वह मसीह में आया था और विश्वास किया था। यरूशलेम में वह पौलुस के साथ था, परंतु उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी कि वह मंदिर में जाए और वहां के अनुष्ठान में सहभागी हो। मेरे मित्रों, उसकी पृष्ठभूमि ही ऐसी नहीं थी। यदि वह चाहता तो वह ऐसा करने के लिए अनुग्रह के अधीन स्वतंत्र था। अनुग्रह के अधीन हमारी स्वतंत्रता का मेरा अर्थ यही है कि पौलुस जानता था कि जो मन्नत उसने मानी है उसका उद्धार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहूदी हो या अन्य जाति, दोनों ही का उद्धार मसीह यीशु के द्वारा केवल अनुग्रह से ही हुआ है। मेरे मित्रों, पौलुस की मन्नत में संभवतः उपवास रखना और विशेष भोजन करना था। उसकी पृष्ठभूमि भी यही थी। मैंने अपनी यात्राओं में देखा है कि अनेक विश्वासी भोजन के प्रति मान्यताओं के अधीन हैं। उनकी संख्या देख मुझे आश्चर्य होता है। वे मुझे समझाते रहते हैं कि यह या वह भोजन मुझे क्या लाभ पहुंचाएगा या हानि करेगा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भोजन से जो अंतर पड़ेगा वह आपकी देह पर पड़ेगा? भोजन आपको परमेश्वर के समक्ष निर्दोष नहीं बनाएगा। अनुग्रह के अधीन आप किसी प्रकार का भोजन खाएं या ना खाएं, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे मित्रों, जो अंतर पड़ेगा वह आपके स्वास्थ्य और शारीरिक दशा पर ही पड़ेगा। परमेश्वर के साथ आपके संबंधों में भोजन की कोई भी भूमिका नहीं है। काश परमेश्वर के जन इस बात को सीख जाते। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 30 से 32 पद में पढ़ते हैं, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के प्रति उनके मन की कड़वाहट और उनकी घृणा पर ध्यान दीजिए। पौलुस से घृणा करने का उनका कारण यह था कि पौलुस सिखाता था कि उद्धार पाने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक नहीं है। यदि पौलुस अपने लोगों की प्रथाओं का पालन करना चाहता था तो वह गलत नहीं था, क्योंकि वह अपने लोगों को भी मसीह में लाना चाहता था। यद्यपि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य है, मेरी राय में निश्चय ही पूरा हुआ है। भीड़ ने तो पौलुस को मार ही डाला होता यदि सेना का सरदार सैनिक लेकर वहां पर नहीं पहुंचता। आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। पौलुस का बेड़ियों में जकड़ा जाना। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? मित्रों, ध्यान दीजिए, सेना का सरदार पौलुस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसने यह घोषणा की कि यह पौलुस है, अन्य जातियों का महान प्रेरित। वह पौलुस को नहीं जानता था, वह तो केवल यह सोच रहा था कि उसने कोई अपराध किया है, अतः उसने पौलुस को जंजीरों से बांधने की आज्ञा दी। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 34 से 36 पद में आगे पढ़ते हैं। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे, और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि सेना के सरदार को भीड़ की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो वह पौलुस को गढ़ में ले गया, अर्थात किले में ले गया। भीड़ तो पौलुस को मारकर ही दम लेना चाहती थी और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 37 पद में। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? अब देखिए यहां पर क्या होता है कि सेना का सरदार आश्चर्यचकित था, क्योंकि जिसे वह एक साधारण अपराधी समझ रहा था वह यूनानी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलता था, अतः उसने सोचा कि वह कोई विदेशी राजनेता है। तब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 38 पद में, क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4,000 कटार बंद लोगों को जंगल में ले आया? यहां पर फिर से देखिए, उसने सोचा पौलुस उस भीड़ का नेता है जो जुलूस निकालना चाहता था। तब हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 39 पद में पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसूस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। मेरे मित्रों, पौलुस यूनानी अवश्य बोलता था, परंतु उसने सेना के सरदार को बताया कि वह एक यहूदी व्यक्ति है। जब सरदार ने सुना कि वह कौन है, तब उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि तू कौन है, ठीक है उससे तू बात कर। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 40 पद में पाते हैं, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। मेरे मित्रों, पौलुस सेना के सरदार से तो यूनानी भाषा में बात कर रहा था, परंतु भीड़ को संबोधित करते समय उसने उनकी मातृभाषा में बात की। उसने ज्यों ही इब्रानी बोलना आरंभ किया वे शांत होकर सुनने लगे, क्योंकि अपनी मातृभाषा से वे असीम प्रेम रखते थे, इसलिए वे पौलुस की बातों को ध्यान से सुनने लगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 22 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में भीड़ के समक्ष पौलुस का प्रतिवाद। इस अध्याय में भीड़ को दिया गया पौलुस का संदेश है। वह मसीह के साथ साक्षात्कार की चर्चा करता है और यरूशलेम आने की क्रमिक के घटनाओं को उन्हें सुनाता है। कोड़ों की मार से बचने के लिए वह अपनी रोमी नागरिकता की दुहाई देता है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रेरित पौलुस का एक महान संदेश है और यह आपके जीवन के लिए भी बहुत आशीषमय होगा। भीड़ के समक्ष पौलुस का प्रतिवाद। हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों और पितरों। जी हाँ, वे सब एक ही जाति के थे, परंतु ये भाई उसे जान से मार डालना चाहते थे। क्या वह उपहास कर रहा है? जी नहीं, क्योंकि वह वृद्धों के लिए सम्मान भी प्रकट कर रहा है, पितरों अर्थात पिताओं। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 2 पद में, वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, ध्यान दीजिए, उसने ज्यों ही इब्रानी भाषा बोली वे सब के सब ऐसे शांत हो गए जैसे आंधी थम गई हो। वे अपने ही जाति भाई की बात सुन रहे थे। वह पहले अपना व्यक्तिगत इतिहास को सुनाता है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, पौलुस के सताने वाले यहूदी धर्मगुरु थे। पौलुस उनसे कहता है कि वह उन्हीं में से एक है। वह फरीसी था। उनसे सहानुभूति और प्रेम रखने का एक कारण यह भी था कि वह उनकी मनोदशा को जानता था। वह उन्हें अपनी पृष्ठभूमि समझा रहा है क्योंकि वह उन्हें मसीह के पास लाना चाहता था कि मसीह यीशु के द्वारा ही उद्धार है। पौलुस का इतिहास प्रतिष्ठा से पूर्ण था। तरसूस उस युग का एक यूनानी शिक्षा का केंद्र था। पौलुस के समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एथेंस या कुरिंथ में नहीं परंतु तरसूस में था। चाहे एथेंस और कुरिंथ कैसी ऊंचाइयों पर क्यों न हो, तरसूस एक समृद्ध यूनानी नगर एवं शिक्षा का केंद्र था। मेरे मित्रों निसंदेह पौलुस ने उस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और उसकी पृष्ठभूमि यूनानी संस्कृति की थी। उसने यरूशलेम में गमलियल के अधीन भी शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे उसकी बातें सुनने लगे क्योंकि गमलियल भी एक महान गुरुओं में से एक था। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। मेरे प्रिय मित्र ध्यान दीजिए कि पौलुस कलीसिया या विश्वासी या मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ कर बंदीगृह में डालता था। कहने की अपेक्षा विश्वासियों के समूह अर्थात पंथ, वह कहता है कि इन लोगों को वह पकड़कर मरवाता था। वह उसी शब्दावली को काम में ले रहा है जिसे वे समझते हैं, और पौलुस तो समझता ही था। और मेरे विचार में आज भी पंथ कहना उचित ही होगा। यह पंथ क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन। जी हाँ, यह मसीह यीशु का व्यक्तित्व है। वह उनसे कह रहा है, मेरी पृष्ठभूमि भी आपकी सी ही है। मैं भी पहले ऐसे ही था। मैंने इस पंथ को सताया है। मैं आपके मनोभाव को समझता हूँ। मैंने ही ऐसा किया था। तब हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 5-7 पद में पढ़ते हैं, इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। मेरे मित्र यहाँ पर हम पाते हैं कि पौलुस उन्हें अपना अनुभव सुना रहा था कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और किस रीति से उसके जीवन में परिवर्तन आया। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 8 पद में, उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। मेरे विचार में तो वहां ऐसी शांति छा गई थी कि पिन भी गिरती तो अवश्य ही आवाज आती अर्थात सुनाई देता। तब हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। मेरे प्रियो यहां मैं चाहता हूं कि हम पौलुस के मन परिवर्तन का संदर्भ को देखें। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। पौलुस यहां कहता है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। यह अंतर आलोचकों के लिए आलोचना का विषय था। यथार्थ में देखा जाए तो अंतर कुछ भी नहीं। पौलुस के साथियों ने शब्द तो सुना परंतु वे समझे नहीं कि वह वाणी क्या कहती थी, न ही वे समझ पाए कि वह वाणी किसकी थी। उन्होंने केवल शब्द सुना। तब हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 10-15 पद में पढ़ते हैं, तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शॉल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु के साथ पौलुस का यह साक्षात्कार व्यक्तिगत था, और मेरे विचार में जब वह अरब के रेगिस्तान में था तब प्रभु यीशु उससे बातें करता था और उसे सिखाता था। हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 16 से 20 पद में आगे पढ़ते हैं, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है कि जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था, और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। मेरे प्रिय मित्र, पौलुस भूला नहीं था कि वह स्तिफनुस के पत्थरवाह में सहभागी ही नहीं व्यवस्थापक भी था। उसकी अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ गई थी और उसे मन परिवर्तन के लिए तैयार भी किया। हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 21 से 22 पद में पढ़ते हैं, और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। पौलुस अन्य जातियों का उल्लेख करता है क्योंकि वह उनमें मसीह का प्रचार कर रहा था। यहूदी इस बात को जानते थे। यह बिजली बत्ती के फ्यूज उड़ा देने के समान था, बस अब वे उसकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानो कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब पौलुस भीड़ से इब्रानी में बात कर रहा था तब सेना के सरदार के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह इब्रानी बोल रहा था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि वह यूनानी था, और समस्या क्या है इसे भी उसे समझ में नहीं आया। अतः उसने भीड़ को क्रोधित देखा तो पौलुस को गढ़ में ले गया। उसने सोचा कि पौलुस बंदी तो बनाया ही जा रहा है, तो क्यों ना हम इसे कोड़े मार कर सच उगलवा लें। पौलुस अपनी रोमी नागरिकता की दुहाई देता है। पौलुस को अब तक गलत ही समझा जा रहा है। यहूदी सोच रहे थे कि वह त्रिफिमूस को मंदिर में लाया, जबकि उसने ऐसा नहीं किया था। मेरे मित्रों, सेना का सरदार सोचता है कि वह विद्रोहियों का कोई मिस्री नेता है, अतः अब देखें कि वह कौन है। वह एक इब्रानी है जो धारा प्रवाह यूनानी बोल रहा है। वह एक रोमी नागरिक भी है, अतः वह कोड़ी की मार से बचने के लिए अपनी रोमी नागरिकता भी प्रकट करता है। तब हम आगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 26 से 28 पद में पढ़ते हैं। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है, यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है। उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूं। मेरे मित्रों, यहां पर हमें पता चलता है कि सेना का सरदार कभी दास था। उसने किसी प्रकार पैसा इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता खरीदी थी। अब वह सेना में पदोन्नति पाकर सरदार बन गया था। अतः वह एक स्वतंत्र जन्मजात रोमी नागरिक को बंदी बनाकर अचंभित था। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं, तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। मेरे मित्रों, सरदार ने देखा कि उसके हाथ में एक असाधारण मनुष्य है। वह शिक्षित है और यूनानी बोलता है। वह कोई साधारण अपराधी भी नहीं है, वह यहूदी है और रोमी नागरिक भी है। अतः उसने कहा, मैं पौलुस के साथ अपराधी का सव्यवहार नहीं कर सकता, हमें उससे सुनना है कि उसके विरुद्ध दोषारोपण क्या है। अतः उसने महायाजक और महासभा के समक्ष पौलुस को अपना प्रतिवाद सुनाने का प्रबंध किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पौलुस में रोमी साम्राज्य में प्रचारक होने के योग्य अनेक गुण थे। उसमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण था, यूनानी प्रशिक्षण के कारण वह वैश्विक विश्वासी था, उसे मूसा की व्यवस्था की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त थी जिसके द्वारा वह व्यवस्था को मसीह के आगमन, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रकाश में समझा सकता था। उसकी रोमी नागरिकता उसके लिए कोई कम लाभ की बात नहीं थी, उसी के कारण वह रोम जाने में सफल हुआ था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही पौलुस के जीवन की गवाहियों के द्वारा से आशीष को प्राप्त किया है। हम देख रहे हैं कि पौलुस किस रीति से परमेश्वर की महान गवाहियों को बड़ी भीड़ के सामने, सेना के अधिकारी के सामने, फरीसी और सदूकियों के सामने गवाहियों को दे रहा है, और यह उसकी महान गवाही है जिसके द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। मेरे मित्र, क्या आज मैं और आप ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे अन्य लोग भी बचाए जाएं, वे भी उद्धार को प्राप्त करें, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें? मेरे मित्र, आज आप भी यदि किसी प्रकार के सताव में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु के शरण में आए, वह आपकी सहायता करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी महिमा हो, महिमा ही महिमा, मसीह महिमा।